हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्टअप एरा। मैं हूं सोहेल अख्तर और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बुक रिव्यू करने वाले हैं जिस बुक का नाम है सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। जैसे कि आप इस बुक को देख सकते हैं, इस बुक के जो राइटर हैं वो है रॉबिन शर्मा। और दोस्तों इस बुक में रॉबिन शर्मा ने हमें बहुत ही अच्छी कहानी के जरिए सीख दी है जिसे हम अपने लाइफ पे अप्लाई करके अपने आप को खुद को डेवलप कर सकते हैं और इस बुक से बहुत सारे लेसन को हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस बुक के जो भी लेसन है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम वहां पे भी इंस्टाग्राम पे बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और फटाफट जानते हैं कि रॉबिन शर्मा ने इस बुक में हमें क्या खास बताया है और वो सन्यासी कौन था जिसने अपनी पूरी संपत्ति यानी अपनी फरारी बेच दी और हिमालय के वनों में चला गया। दोस्तों हम इस कहानी को पहले शुरू से जानते हैं। दोस्तों एक फॉरेन कंट्री का एक वकील था जिसका नाम था जूलियन मेंटले। दोस्तों वो वकील बहुत ही प्रसिद्ध वकील था और वो बहुत पैसे कमाता था। जितने भी बड़े बड़े लोगों के जो केस होते थे वो जूलियन मेंटले ही हैंडल करता था और वो बहुत पैसे इसे कमाता था। दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि अदालत में उसे अचानक चक्कर आ गया और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां पे पता चला कि उसको हार्ट अटैक आया है, उसका जो हेल्थ है वो कई दिनों से ठीक नहीं है और वो पिछले एक महीने से डिप्रेशन में था। और वो जब अस्पताल से बाहर निकला तो दोस्तों वो अपना पूरी संपत्ति, उसके पास फरारी थी, उसके पास बहुत बड़े बड़े मकान थे, अलीशान आइलैंड थे, वो सब बेचकर वो हिमालय यानी इंडिया में आ गया। और दोस्तों उसने ऐसा क्यों किया और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। वो 3 साल बाद अपने दोस्त के पास जाता है अपने कंट्री में, जो उसके दोस्त का नाम होता है वो होता है जॉन और वो उसका कलीग होता है। और वो उसके ऑफिस में अचानक जाता है। जब 3 साल बाद उसका दोस्त जॉन जब जूलियन मेंटले को देखता है तो वो मतलब आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि वो जूलियन मेंटले नहीं रहता है जो 3 साल बाद उसने देखा था एक मोटे व्यक्ति के तौर पे, एक वृद्ध व्यक्ति के तौर पे जो अचानक कोर्ट में चक्कर खाकर गिर गया रहता है। दोस्तों वो जूलियन मेंटले एकदम हेल्दी रहता है, एकदम स्वस्थ रहता है और वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो 10 साल और जवान हो गया है। तो दोस्तों उसके दोस्त ने उससे पूछा कि तुम ये कैसे, इतना ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर कैसे हुआ और तुम कहाँ चले गए थे इतने दिनों से जो तुम दिखाई नहीं दे रहे थे, ना ही तुम वर्क कर रहे थे और मैंने सुना कि तुमने अपनी फरारी बेच दी, अपने मकान बेच दिए और अपना सब कुछ बेच दिया। तो दोस्तों उसके बाद जूलियन मेंटले उस अपने दोस्त को बताता है कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था और मैं कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया हूँ और कैसे बहुत ही अच्छी लाइफ को जी रहा हूँ। तो दोस्तों वो जो जूलियन मेंटले है उसने अपने 3 साल की जर्नी बताई है उस अपने जॉन को। और दोस्तों उसने बताया कि मैं जब अस्पताल में था और जब अस्पताल में मुझे ट्रीटमेंट हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ, मैं केवल पैसों के पीछे भाग रहा हूँ और मैं अपने लाइफ को खत्म कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ बेच दूंगा अपना और बहुत दूर चले जाऊंगा एकांत में, जहाँ पे मैं अपने लाइफ को खोज पाऊँ, जहाँ पे मैं ये खोज पाऊँ कि मैं इस लाइफ में क्यों आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ और मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। इसीलिए मैंने सारी संपत्ति बेच दी, मैंने अपनी फरारी बेच दी, मैंने अपना घर बेच दिया और सब कुछ छोड़कर मैं इंडिया चला गया जहाँ हिमालय पर्वत है और उस हिमालय पर्वत के नीचे मुझे बहुत ऐसे लोग मिले, बहुत ऐसे ऋषि मुनि मिले और बहुत ऐसे सन्यासी मिले जिन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया लाइफ के बारे में। तो दोस्तों उस गांव के जो गुरु थे जिनका नाम था योगी रमन, उनके पास ये जूलियन मेंटले जाता है और उसने अपने पिछले सालों को मतलब बताता है कि मैं ऐसा था, मैं एक वकील हूं और मेरे साथ ये हुआ और मैं अपना देश छोड़ के इधर आया हूं ताकि मैं अपने जीवन के लक्ष्य को खोज सकूं। और दोस्तों उसके बाद जो योगी रमन थे उन्होंने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई और दोस्तों उस कहानी के जरिए ही जो जूलियन मेंटले था उसने अपने जीवन के लक्ष्यों को खोजा और अपने जीवन में भी सफल होने के लिए, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए, अपने जीवन में खुशियां पाने के लिए वो क्या क्या किया उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये तो छोटी सी कहानी थी, अब दोस्तों मैं वो छोटी कहानी सुना देता हूँ जिसके बारे में योगी रमन ने जूलियन मेंटले को बताया। दोस्तों वो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक बगीचा है जहाँ पे बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं, बहुत ही वहाँ का जो पर्यावरण है वो बहुत ही रोमांचक है और वहाँ का वातावरण एकदम शांत है। उस बगीचे के बीचों बीच एक लाइट हाउस लगा है जो एक लंबा सा लाइट हाउस है और दोस्तों उस लाइट हाउस के ऊपर एक लाइट जल रही है और नीचे एक छोटा सा दरवाजा है और दोस्तों उस दरवाजे से एक सुमो पहलवान निकल कर आता है जिसे रेसलर बोलते हैं। और दोस्तों वो जो सुमो पहलवान रहते हैं वो बहुत ही हट्टा कट्टा होता है, बहुत बड़ा होता है, लंबा चौड़ा होता है और उसने अपने बदन पे कुछ नहीं पहना रहता है सिवाय एक सुमो जो पहलवान जो पहनते हैं लंगोट, उसके सिवा कुछ नहीं पहना रहता है और वो लंगोट जो होता है वो गुलाबी तारों से बना होता है। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही वो सुमो पहलवान बाहर निकल के आता है और इधर उधर देखता है तब तक उसके पैरों के नीचे एक सुनहरी वॉच आ जाती है जिसके ऊपर वो फिसल जाता है और वो गिर जाता है धड़ाम से। दोस्तों उसके बाद उसके नाकों में यानी उसके नोजल जो होते हैं उसमें कुछ गुलाबी फूलों के सुगंध जाते हैं जो बगीचे में पीले रंग के गुलाब फूल होते हैं। और दोस्तों जैसे ही उसके अंदर वो गुलाब के फूल के सुगंध जाते हैं वो फिर से उठ खड़ा होता है और वो उस बगीचे को एंजॉय करने लगता है जहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं। और दोस्तों जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है उसे एक रास्ता दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे हीरे होते हैं और वो उस हीरो के रास्ते से आगे चला जाता है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि इस लेसन में, इस छोटी सी कहानी में बहुत सारे ऐसे लेसन छुपे हुए हैं जिसे आप जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों वो लेसन क्या है मैं यही बताने वाला हूँ आपको और वो ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने बताया वो एक थीम था कहानी का और अब हम जानने वाले हैं वो कहानी का लेसन क्या है, वो हमें बुक से क्या सीखने को मिलते हैं। दोस्तों योगी रमन ने उस कहानी में जो 7 चीजें बताई थी उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों योगी रमन ने जो कहानी में सबसे पहला चीज बताया था वो बताया था वैभवपूर्ण बगीचा, मतलब वो जो बगीचा था वो जो गार्डन था जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले थे। और दोस्तों उससे ये तात्पर्य निकलता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, मानी आपके पास आपके दिमाग के ऊपर आपके ब्रेन के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। वो जो बगीचा था वो हमारे दिमाग का प्रतीक था। दोस्तों कहने का मतलब कि आपका जो दिमाग है वो भी एक बगीचे की तरह है जिसमें आप जैसे फूल बोएंगे वैसे आपको प्राप्त होंगे। सपोज दैट अगर आप फूल लगाते हैं तो आपको बहुत सारे उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर आप अपने माइंड में दूसरी चीज लगाते हैं जैसे खरपतवार लगाते हैं, यानी अगर आप अपने बगीचे में खरपतवार लगाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव विचार लाते हैं तो आपकी जो लाइफ होगी वो भी पॉजिटिव होगी, मतलब इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड में खरपतवार लगाते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप अपने माइंड में निगेटिव चीजों को डालते हैं, कोई भी लर्निंग नहीं डालते, कोई नया कुछ नहीं सीखते हैं, बस बकवास कचरा गॉसिप वगैरह सब यही कुछ डालते हैं, लोगों की बातें डालते हैं, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो ग्रो नहीं करेगा और आपके गार्डन में खरपतवार उगेंगे, यानी उससे आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं, ना ही आपको फायदा होगा और ना ही दूसरों को फायदा होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका माइंड है, जो आपका ब्रेन है, वो एक बगीचा है, आप उसमें जैसे चीज बोएंगे वैसे आपको मिलेगा। और दोस्तों जो कहानी में दूसरा प्रतीक बताया गया था वो था लाइट हाउस, जो एक लंबा सा लाइट हाउस है। और दोस्तों वो इस चीज का प्रतीक है कि आप अपने लाइफ के उद्देश्यों को ढूंढें, मतलब आपके लाइफ का उद्देश्य भी बहुत बड़ा होना चाहिए उस लाइट हाउस की तरह आपके लाइफ में। क्योंकि दोस्तों आपका जो जीवन है वो ऐसे ही बर्बाद करने के लिए आप इस दुनिया में नहीं आए हैं, आपके जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। आपको ऊपर वाले ने किसी चीज के लिए भेजा है ताकि आप यहाँ पे दुनिया में आके कुछ अच्छा काम करें। और दोस्तों जब तक आप उद्देश्य फाइंड नहीं कर सकते हैं तब तक आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। अब दोस्तों जो इस कहानी का तीसरा प्रतीक है वो है सुमो पहलवान, यानी वो जो रेसलर था, वो मोटा सा बड़ा सा जो रेसलर था। दोस्तों वो प्रतीक है कैजन का। कैजन का मतलब होता है लगातार डेवलपमेंट। अगर आप 0 पे हैं तो कल 1 पे होंगे, कल 2 पे होंगे, उसके बाद 3 पे होंगे, मतलब आप बढ़ते जाए लगातार। तो दोस्तों रेसलर होते हैं, जो पहलवान होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने आधे घंटे के मैच के लिए 3-3 महीना 4-4 महीना वो प्रैक्टिस करते हैं और दोस्तों वो अपने आप को डेवलप करते हैं ताकि उस मैच में वो विन करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको भी अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत है, आपको भी लगातार ग्रो करना है, आपको भी नई नई चीजें सीखनी है और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना है, यानी वो कैजन करना है, यानी जिसका प्रतीक है कि आपको अपने आप को सेल्फ डेवलप करना है। अब दोस्तों हम आते हैं इस कहानी के चौथे पात्र पे, यानी जो चौथा प्रतीक है वो है गुलाबी तारों से बना हुआ अंडरवेयर, यानी जो सुमो पहलवान ने पहन रखा था। दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि वो जो गुलाबी तार थे वो कुछ लिमिट्स में थे, वो कुछ ऐसे ही जगह को ढक रहे थे, कुछ ऐसे ही जगह तक थे जहाँ पे वो होने चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अनुशासन, यानी आपको अनुशासन भी चाहिए अपने लाइफ में। तो अनुशासन कहने का मतलब है कि अगर आप सुबह उठना चाहते हैं तो दोस्तों आपने अगर सुबह 4 बजे का या 5 बजे का अलार्म लगाया तो आपको उतने टाइम उठ जाना है, ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन है। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस टाइम नहीं उठेंगे तो आप अपने वक्त को गवा देंगे और फिर आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे कैसे ध्यान दे सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं कहानी के पांचवें प्रतीक पे और दोस्तों वो कहानी के जो पांचवा प्रतीक था वो है सोने का वाच। आपको याद होगा जिस पे वो पहलवान फिसल कर गिर गया था। और दोस्तों सोने का वाच प्रतीक है आपको आपके टाइम से, मतलब आपका जो टाइम है वो बहुत ही मूल्यवान है जैसे सोने की घड़ी होती है। दोस्तों कहने का मतलब ये आपकी जो लाइफ है इसमें आपको कुछ लिमिटेड डे मिले होते हैं, कुछ लिमिटेड आवर होते हैं, कुछ लिमिटेड साल होते हैं और आपके लाइफ में आपको लिमिटेड समय मिलते हैं जीने के लिए जिंदगी को, लेकिन दोस्तों आप क्या करते हैं, आप फोन पे वो टाइम बर्बाद करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करते हैं, आप इधर उधर की बातें करने में वो टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों आपको अपने टाइम वेस्टिंग करना बंद करना होगा। और दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं टाइम वेस्टिंग रोकने के लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊं, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, मैं इसके लिए भविष्य में एक वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे टाइम वेस्टिंग को रोके, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करें और अपने टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाए, उससे कुछ फायदा ले सके। यानी दोस्तों जो रॉबिन शर्मा बोलते हैं वो सोने की स्टॉपवॉच का प्रतीक देकर बोलते हैं कि अपने टाइम की कदर करो, उसे यूज करो, उसे अच्छी चीजों में लगाओ, उसे कुछ लर्निंग करने में लगाओ, उसे कुछ डेवलपमेंट यानी सेल्फ डेवलपमेंट में फोकस करने में लगाओ, यानी मतलब अपने टाइम की कदर करो, उसे वेस्ट ना जाने दो। दोस्तों अब हम आते हैं कहानी के जो छठे प्रतीक पे, और दोस्तों वो है गुलाबों से सुगंधित पुष्प। यानी जो उस बगीचे में पीले कलर के गुलाब थे जो बहुत ही सुगंधित थे, और जैसे ही वो सुमो पहलवान गिरा, उसकी नोजल में जैसे ही उस गुलाब के सुगंध गए, वो फिर से उठ खड़ा हुआ। दोस्तों इससे कहने का मतलब है कि आप दूसरों की मदद करें, मतलब निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा। यानी जैसे वो गुलाब कर रहे थे, वो जो व्यक्ति था, वो जो सुमो पहलवान था, वो गिर चुका था, वो अपनी लाइफ में गिर चुका था अपने समय के ऊपर फिसल कर। लेकिन क्या हुआ कि वो जो गुलाब के पुष्प थे, उन्होंने अपने सुगंध से उसे दोबारा उठाया। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि आप भी अपने लाइफ में गिरेंगे, और जब आप गिरेंगे तो उस टाइम भी कुछ अच्छे इंसान होंगे जो आपके हाथ पकड़कर आपको ऊपर उठाएंगे और आपको बताएंगे कि ऐसे करना है। तो दोस्तों अगर आप भी खुद ऐसा करते हैं, आप भी दूसरे लोगों को मतलब सपोर्ट करते हैं जो नीचे गिर चुके हैं, खड़ा कराते हैं, उन्हें सपोर्ट प्रदान करते हैं, उन्हें बताते हैं कि अपने लाइफ में कैसे जीना है, कैसे सक्सेसफुल होना है, तो दोस्तों इससे जब आप गिरेंगे ना, तो वो लोग भी मतलब एकजुट होकर आपको उठाएंगे। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। दोस्तों कहने का मतलब यही कि आप निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करें, उनके लाइफ में कुछ मतलब वैल्यू एड करें, उन्हें कुछ सिखाएं, उन्हें ये बताएं कि अपने लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है। अब दोस्तों इस कहानी का जो लास्ट प्रतीक था, मैंने आपको बताया कि वो जो हीरो से जुड़ा हुआ जो रास्ता था जिस पर सुमो पहलवान चला गया, और दोस्तों वो है वर्तमान। दोस्तों कई लोग हमें समझते हैं कि जो हमारे भविष्य की सोचते हैं और वो टेंशन लेते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा, और दोस्तों उसमें से भी कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब कई क्या अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास्ट को लेकर चिंतित रहते हैं, या फिर जो कुछ भी वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ रिसोर्सेज ही नहीं है, मैं अपने लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूं, मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की है, मैंने तो ये नहीं किया है, मेरा तो कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, मतलब ऐसे अपने पास्ट को लेकर रोते रहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि अगर वो जिंदगी भर ऐसा करते हैं तो वो कुछ कर पाएंगे? ऑफकोर्स वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों वो पास्ट को लेकर रोते रहते हैं। दोस्तों आपको भी अगर अपने लाइफ सक्सेसफुल होना है तो रॉबिन शर्मा ये बताते हैं कि आप अपने पास्ट और फ्यूचर को भूल जाएं, मतलब आपका जो चीज है वो आपका वर्तमान है, यानी जो प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है उसी में आप जी रहे हैं। और दोस्तों अगर आप अपने प्रेजेंट पे वर्क करते हैं, आप अपने प्रेजेंट को डेवलप करते हैं, अगर आप अपने टाइम को जो इस वक्त चल रहा है उसे अपने लर्निंग में लगाते हैं, आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाते हैं, तो दोस्तों आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे, साथ ही आप फ्यूचर में सक्सेसफुल भी होंगे। दोस्तों कहने का मतलब यही है, जो रॉबिन शर्मा ने इन सात प्रतीक के जरिए एक कहानी के रूप में हमें बताया है कि हमें क्या क्या करने चाहिए अपने लाइफ में, कैसे अपने माइंड को डेवलप करना चाहिए, कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए और कैसे दूसरों की लाइफ में वैल्यू को ऐड करनी चाहिए। दोस्तों अगर ये सब चीजें आप भी करते हैं तो दोस्तों आपको अपनी संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो जो जूलियन मेंटले था, जब उसने अपनी फरारी बेची, जब उसने अपनी संपत्ति बेची, जब उसने अपने देश छोड़ा, तब जाकर ये ज्ञान उसे प्राप्त हुआ हिमालय में। लेकिन दोस्तों वो जो रॉबिन शर्मा है वो आपके लिए आपके घर पर बैठे आपको वो बुक प्रोवाइड करते हैं और वो सारी चीजें आपको बताते हैं जो उस जूलियन मेंटले ने हिमालय में जाकर सीखी थी। तो दोस्तों आप इसे बहुत इजी तरीके से परचेज कर सकते हैं, आप इस बुक को पढ़ भी सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगा, आप जाइए परचेज कीजिए और इस बुक्स को पढ़िए, बहुत ही शानदार बुक्स है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप पसंद कर दिए होंगे, आप इसे लाइक भी किए होंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके और वो भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। तो मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।